लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत फादर विनय गुड़िया के साथ हुई भेंट वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं।
यीशु तेरा प्यार सागर से भी गहरा।
कलीसिया के इतिहास में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी याद बड़ी श्रद्धा से की जाती है, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर एवं लोगों के लिए समर्पित किया। कैथोलिक कलीसिया की भाषा में उन्हें संत कहा जाता है। फ्रांस में जन्मे संत सेंट डिबूस उन 10 महान संतों में से एक हैं, जिन्हें संत पापा फ्रांसिस ने 15 मई 2022 को संत पेत्रुस महाकिर्चघर के प्रांगण में संत घोषित किया। उन्होंने कलीसिया में धर्म शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता महसूस करते हुए क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन धर्म समाज की स्थापना की है। संत पापा पॉल षष्ठम ने फादर चेसार डिबूस की धर्म शिक्षा की शैली की मौलिकता से प्रभावित होकर 27 अप्रैल 1975 को उन्हें कलीसिया में धर्म शिक्षकों के लिए एक आदर्श के रूप में पेश किया। आज कलीसिया में धर्म शिक्षा पर पुनः जोर दिए जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि इंटरनेट एवं मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग के बीच युवा सहज ही भ्रमित होकर भटक सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन धर्म समाज के सदस्य अपने संस्थापक संत चेसार डिबूस के पद चिन्हों पर चलते हुए जरूरतमंद बच्चों, महिलाओं एवं युवाओं की मदद कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है फादर विनय गुड़िया, जो आज हमें अपने संस्थापक से परिचय करा रहे हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है फादर विनय गुड़िया के साथ एक भेंट वार्ता। उनके साथ बात कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
मुझे इसे बताने में काफी खुशी हो रही है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं कह दूं कि चेसार डिबूस का जन्म फ्रांस में अवियों के नजदीक कावायोंग नामक शहर में 3 फरवरी 1544 को हुआ था। वे स्वाभाविक रूप से ख्रिस्त परिवार और सामाजिक परिवेश में पले बढ़े। किशोरावस्था में संकट के दौर से गुजरे, अपनी युवावस्था पर गहरा चिन्ह छोड़ा, परंतु गलत मित्रता और आसान मनोरंजन के जरिए अपने जीवन को लापरवाह बना डाला था, जिससे वे विश्वास के जीवन से दूर होते चले जा रहे थे। परंतु अंतोनियेते रवायाद, एक भली महिला, और लुइस गुयोत जैसे दो विनम्र लोगों ने पाप के मार्ग को त्यागने और एक प्रामाणिक ख्रिस्त विश्वास के जीवन को जीने के लिए मदद करने लगे। डिबूस परिवार में ये दोनों भले चिर परिचित व्यक्ति प्रार्थना और पश्चाताप के द्वारा ईश्वर से इनका मन परिवर्तन के लिए निवेदन किया करते थे। तब 1575 का पवित्र वर्ष आया। चेसार ने अपनी जयंती मनाई और एक जेसुइट पुरोहित फादर पेके के मार्गदर्शन में प्रभु के पास लौट आए। उन्होंने अपना जीवन बदल डाला, अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी जो किशोरावस्था में बाधित हो गया था, और पुरोहिताई की ओर अग्रसर हो चले। वे 1582 में पुरोहित अभिषिक्त होकर एक अति उत्साही धर्म शिक्षक बन गए और भंजित रोटी के सदृश अपने लोगों को एक सरल, तत्काल, प्रतीकात्मक और बोधगम्य शैली के साथ धर्म शिक्षा प्रदान किया, जो धर्म समाज का एक प्रमुख प्रेरितिक कार्य है। मिलान के महाधर्माध्यक्ष सन चार्ल्स बोरोमेओ की धर्म शिक्षा से प्रभावित होकर, जिसके कार्य के विषय में वे परोक्ष रूप से जानते थे, कुछ पुरोहितों का एक समूह एकत्रित कर सामुदायिक जीवन शैली की रचना की। इस प्रकार ख्रिस्तीय धर्म सिद्धांत का अभ्यास करने के लिए कलिसिया में 29 सितंबर 1592 में धर्म समाज की स्थापना होती है, जिसे आज क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन धर्म समाज के नाम से जाना जाता है। वर्षों तक फलदायी कैटेकेटिकल अपोस्टोलेट का कार्य चला, लेकिन उनके साथ कुछ शारीरिक और मानसिक कष्ट की भी कमी नहीं रही। उनके कुछ प्रारंभिक साथी भी छोड़ चुके थे तथा वे धीरे धीरे दृष्टिहीन होते चले जा रहे थे। फिर जीवन के अंतिम वर्षों में क्रूस पर येसु की नग्नावस्था की भांति उनकी मृत्यु पास्का के दिन 15 अप्रैल 1607 को अवियों के सेंट जॉन द ओल्ड समुदाय में हो गई। पौलुस षष्ठम ने 1975 ईस्वी के पवित्र वर्ष के अवसर पर 27 अप्रैल को उनके धर्म शिक्षा की शैली की मौलिकता से प्रभावित होकर फादर चेसार को कलिसिया में धर्म शिक्षकों के लिए एक आदर्श के रूप में पेश करते हुए उन्हें धन्य घोषित किया। फिर अभी तुरंत संत पिता फ्रांसिस ने 15 मई 2022 को उन्हें संत घोषित किया, जो हमारे लिए 400 साल के बाद मिले इस वरदान के लिए अत्यंत खुशी की बात है। सर्वप्रथम मैं कहूं तो चेजार देबुस एक अग्रवर्ती धर्म शिक्षक रहे थे। उन्होंने ट्रेंट काउंसिल द्वारा रचित पल्ली पुरोहितों की धर्म शिक्षा, जो केवल पुरोहितों के लिए सुलभ साधन थी, दो स्तंभों के ऊपर धर्म शिक्षा का एक मॉडल की कल्पना की। पहला, लघु धर्म सिद्धांत। यह उन लोगों के लिए था जो विश्वास की सच्चाइयों से दूर होते थे, जैसे कि बच्चे और निरक्षर। इन्हें क्रूस का चिन्ह बनाना, 10 नियम और 7 संस्कारों की जानकारी देना इत्यादि को आपसी बातचीत और रटकर याद करने की विधि द्वारा प्रार्थना करना सिखलाया जाता था। दूसरा, बृहद धर्म सिद्धांत। इसे रविवार और समारोह दिनों में उपदेश मंच से दिया जाता था। इसके अंतर्गत प्रेरितों का धर्मसार, हे पिता, 10 आज्ञा, कलिसिया के 6 नियम और संस्कारों की एक व्यापक परंतु बहुत ही सरल तरीके से व्याख्या दी जाती थी। डॉक्ट्रिनरी परंपरा ने फिर बाद में एक मध्यम धर्म सिद्धांत को जोड़ा, जो संस्थापक के द्वारा कार्यान्वित दोनों धर्म सिद्धांतों के बीच का प्रारूप था। इसे ठोस भाषा और जुड़ी वास्तविकता के साथ किसी लंबे एकलाप से बचते हुए पवित्र ग्रंथ और कलिसिया के धर्माचार्यों के लेखों के प्रचुर संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया जाता था। फिर मौजूद लोगों की भागीदारी को संयुक्त करने के लिए प्रश्नोत्तरी की विधि का उपयोग कर किसी ठोस उदाहरण के द्वारा बताए गए सभी विषय वस्तु का एक सारांश पेश किया जाता था। यही हमारे संस्थापक का कहीं एक मूल धर्म सिद्धांत के रूप में पेश किया गया एक धर्म शिक्षा रही है।
तो शदे फादर विनय गुड़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस बहुमूल्य समय के लिए, आपके इन सुंदर वचनों के लिए, आपने जो अनुभव और अपने धर्म समाज एवं अपने संस्थापक के जीवनी को बतलाते हुए बहुत अच्छी बात हमारे सामने रखी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपके मिशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका सर सलामत तो पगड़ी हजार। लेखक है विजय पंडित। श्रोताओं, किसी भी देश या समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कायदे बनाए जाते हैं और उन नियमों का पालन समाज के हर सदस्य को करना पड़ता है। इसमें चाहने या ना चाहने की कोई गुंजाइश नहीं होती। सभी नियमों का पालन करें तो जीवन सरल, तनाव रहित और सुरक्षित होगा। उदाहरण के लिए, प्रशासन ने आवागमन की सुविधा और सुरक्षा के लिए सड़क के नियम बनाए हैं। उनका पालन करना हर एक का कर्तव्य है, पर कभी कभी लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। मोटरसाइकिल की यात्रा करनी हो तो हेलमेट लगाना उन्हें भारी लगता है, या कहें उनके उल्लंघन को वे अपनी बहादुरी मान बैठते हैं। सड़क के नियमों का पालन सभी गंभीरता से करें तो काफी हद तक सड़क दुर्घटना से बचा जा सकता है। समाज के नियमों का पालन करने के लिए हमें बचपन से ही आदत डालनी चाहिए। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका, विशेष रूप से युवाओं का मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है विजय पंडित की लिखी नाटिका सर सलामत तो पगड़ी हजार।
यार इमरान, तूने आज का अखबार पढ़ा? अब हेलमेट लगाना अनिवार्य हो गया, नहीं तो पुलिस धड़ल्ले से चालान करेगी।
हाँ हाँ पढ़ा है यार, मगर पर यहाँ लोग 4 दिन हेलमेट लगाते हैं और बस 4-5 दिन की ही सख्ती होती है, बस बाद में फिर वैसा का वैसा ही माहौल होता है। क्यों प्रियंका?
हाँ इमरान ठीक कह रहा है, प्रशासन को पूरी तरीके से सख्ती बरतनी चाहिए। पहले भी 4 महीने पहले पेपर में आया था कि हेलमेट लगाना अनिवार्य है, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, 4-5 दिन चेकिंग हुई और फिर सब घूमने लगे बिना हेलमेट के।
हाँ प्रियंका, तुम्हारा कहना एकदम ठीक है, प्रशासन को सख्ती बरतना चाहिए, मगर प्रशासन क्या करेगा? हर आम आदमी का उत्तरदायित्व है कि वो हेलमेट पहने। क्यों राखी, सही है कि नहीं?
एक बात बोलूं करण, हेलमेट तो मुझे सर दर्द लगता है यार, आस पास का कुछ दिखता है नहीं और सीधे देख के चलो तो पास में कौन चल रहा है ये नहीं दिखता है।
हाँ, और कभी कभी तो हॉर्न की आवाज भी नहीं आती। वाकई जिसे हेलमेट की आदत नहीं है वो बड़ा परेशान हो जाता।
और क्या,
तो क्या हेलमेट नहीं पहनना चाहिए? ये हमारी सेफ्टी के लिए जरूरी है।
अरे प्रियंका, तू तो ऐसे कह रही है जैसे रोज हेलमेट लगाती हो। हा?
मैं रोज रोज नहीं, कभी कभी लगाती तो हूँ, मगर तू तो लगाती नहीं है।
अच्छा छोड़ो ये डिस्कशन, जिसको लगाना है लगाएगा, नहीं लगाना हो नहीं लगाएगा।
अरे तू तो बड़ा भाषण दे रहा है करण, हर आम आदमी का उत्तरदायित्व है ये।
हाँ है, मगर पहल कौन करेगा?
तू कर दे पहल।
तो क्या मेरे पहल करने से लोग हेलमेट पहनने लगेंगे?
बस यही प्रॉब्लम है इंडिया की, भाषण सब देते हैं मगर राशन कोई नहीं है, शुरुआत कोई नहीं करना चाहता है।
सही कहा प्रियंका तूने, अरे बस यहाँ बैठे ही रहोगे यार कि कुछ खाने पीने चले। हाँ
हाँ मैं ऑर्डर करता हूँ, कौन क्या क्या खाएगा? मैं तो वही चिल्ली पनीर खाऊंगा।
भाई मैं तो मलाई कोफ्ता खाऊंगी।
और मेरे और... छोले भटूरे लिख लेना।
वाह, इतना खाकर तो पेट भर गया। चलो अब कॉलेज एक आध दो पीरियड भी अटेंड कर लें, बहुत हो गई मौज मस्ती।
हाँ भाई चलो चलो जल्दी।
क्यों भाई करण, तूने तो हेलमेट खरीद लिया ना?
सिर्फ खरीदा ही नहीं, लगा भी लिया है, वो भी ISI मार्क वाला, स्टील बर्ड कंपनी का। आखिर मैंने शुरुआत करी दी भाई।
लगता है करण तुम मेरी बात का बुरा मान गए, शायद इसीलिए आज हेलमेट पहनकर आ गए।
अरे प्रियंका ये तो डरपोक है, मैं देखो कैसे बिंदास गाड़ी चलाता हूँ बिना हेलमेट के।
अरे इसमें डरपोक वाली कौन सी बात है, जो प्रशासन ने नियम बनाया है वो सबके लिए लागू होता है, ये हमारी अपनी सुरक्षा के लिए तो है।
हाँ हाँ ठीक है करण, तुमने पहल शुरू कर दी है, मगर हमसे ऐसी उम्मीद मत रखना। अब भाई मुझे तो हेलमेट से बहुत एलर्जी है।
और वैसे भी सब 4-5 दिन लगाते हैं, यहाँ का प्रशासन ढीला है, इसमें कभी सुधार नहीं होने वाला।
और क्या।
हाँ इमरान सही कह रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो।
तुम लोग तो समझना ही नहीं चाहते, अपनी जान की जिम्मेदारी तो खुद ही करना पड़ेगी ना।
तो तुम लगाओ ना यार, हमसे क्यों उम्मीद करते हो। चलो चलो यार पिक्चर चलते हैं।
कौन सी चले, यमला पगला दीवाना चले?
मगर वो तो एबी रोड पर लगी है ना, वहाँ तो बड़ी सख्ती से चेकिंग होती है। और करण ने तो हेलमेट भी खरीद लिया है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अरे नहीं यार प्रियंका, देख लड़कियों के लिए कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। कभी देखा है किसी लड़की को हेलमेट लगाते हुए? और वैसे भी हम समर कोट तो पहनते ही है ना।
बिल्कुल सही, राखी ठीक कह रही है प्रियंका, और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पिताजी कमिश्नर हैं, जो होगा सो निपट लेंगे। क्यों करण, चलें पिक्चर?
देख लो भाई, मेरा कहना फर्ज था, सो मैंने कह दिया, सर सलामत तो पगड़ी हजार।
इसका क्या मतलब हुआ करण?
इसका मतलब ये हुआ कि जान है तो जहान है, समझने को तैयार नहीं हो तुम लोग।
अरे चलो यार, शो का टाइम शुरू हो गया।
हाँ करण जल्दी चलो, बाद में देते रहना भाषण।
तुम जब पकड़े जाओगे ना तब मालूम पड़ेगा तुमको।
जब पकड़े जाओगे तब ना, तब देखा जाएगा।
हाँ चलो, फिल्म में बड़ा मजा आया। मुझे तो यार सनी देओल की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है।
और मुझे तो बॉबी पसंद है, कितना हैंडसम है वो।
अरे मुझे तो धर्म पाजी पसंद है, अरे क्या डांस किया है यार, मजा आ गया।
अरे तू धर्म पाजी को छोड़, पहले ये बता ट्रैफिक पुलिस वालों ने अपने को पकड़ा किया?
लेकिन इमरान, एक पुलिस वाला घूर घूर के हमें देख रहा था।
अरे तो क्या हुआ, उसकी चालान बनाने की हिम्मत तो नहीं हुई ना। तुम भी प्रियंका, चलो चले, एकदम करण जैसी होती जा रही हो।
अभी तुम सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हो इमरान, हेलमेट से सुरक्षा मिलती है सो मैंने बता दिया, चलो चले।
अरे इमरान, अपनी गाड़ी पे दो पुलिस वाले बैठे हैं।
हाँ लगता है चालान बनाने के लिए बैठे हैं ये लोग।
ये गाड़ियां किसकी हैं? इसका चालान बनाना है, इसका रजिस्ट्रेशन दिखाओ, बीमा दिखाओ भाई, और तुम्हारे हेलमेट कहाँ है?
देखो देखो, मेरे पिताजी कमिश्नर हैं, हमारा चालान मत बनाओ।
ए, क्यों तुमको मालूम नहीं है हेलमेट लगाना कितना जरूरी है? वो देखो सामने एक एक्सीडेंट हो गया है और लड़के का सर फट गया है और लड़की वहां बेहोश पड़ी है। बताओ तुम्हारे पिताजी का क्या नंबर है? कमिश्नर है ना वो।
हमें माफ कर दो, आगे से हम सब हेलमेट लगाएंगे।
हाँ हमें माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब।
सर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, जितना जुर्माना होता है आप ले लीजिए और हम लोगों को छोड़ दीजिए।
ठीक है, आगे से याद रखना, हेलमेट जनता के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। तुम्हारे दोस्त ने हेलमेट लगाया कि नहीं?
मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर साहब, सिर सलामत तो पगड़ी हजार।
सर सलामत तो पगड़ी हजार। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इस नाटिका के कलाकार थे अपर्णा सिंह, पूजा केलकर, संदीप दुबे और विजय पंडित। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।